खिलाफ नहीं फरमाता।
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ शाम हो जाए बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासा जहां तजल्लियात से भर लूं मैं अपना की गली में पया علی میں قیام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں سمٹ کے پاس لائے چند گام ہو جائے، سمٹ کے پاس لائے چند گام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مد حد خیر انام ہو جائے، سبیح مد حد خیر حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے،
آپ سن सुन रहे हैं WTOR 770 साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारे रेडियो और टीवी के सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री ई आवाज ऑफिशियल ऐप। ई आवाज टीवी आपका अपना चैनल है। आप ई आवाज टीवी को तमाम IPTV बॉक्सेस पर फ्री देख सकते हैं। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ई आवाज। फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478986245।
मेरा नाम यासमीन तैयबी है। मैं गुज़िश्ता 25 सालों से इमिग्रेशन की सर्विसेज फराहम कर रही हूँ। हमारा लॉ ऑफिस सैकड़ों पेचीदा इमिग्रेशन के केसेस हैंडल कर चुका है, जिसमें रेफ्यूजी केसेस, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट स्पाउसल स्पॉन्सरशिप्स, PR रिन्यूअल, सिटीजनशिप एप्लीकेशन और इमिग्रेशन अपील्स शामिल हैं। इसके साथ साथ हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन की सर्विसेज भी मौजूद हैं। हमारा फोन नंबर है 9055130012।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कोथरा रोड, मिसिसागा।
अरे आज आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं?
मुझे अपने बेटे की शादी के लिए एक खूबसूरत और मुख्तलिफ बैंक्वेट हॉल की तलाश है।
लो मैं आज आपको बताती हूँ ना सिर्फ मुख्तलिफ और खूबसूरत बल्कि ब्रांड न्यू बैंक्वेट हॉल का। जी हाँ, चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल आपके अपने शहर मिसिसागा में ना सिर्फ शादी ब्याह बल्कि हर किस्म की तकरीब के लिए चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल का ही इंतखाब करें। साजो आवाज का हवाला देने पर स्पेशल डिस्काउंट 9054588888 2935 ब्रू रोड, मिसिसागा। आपकी तकलीफ को चार चांद लगाए चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल।
एशियन फूड सेंटर 9057931338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेड, डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। ऑर्डर नाउ फॉर इन स्टोर फ्री पिकअप 9057931338। होम डिलीवरी इज ऑल्सो अवेलेबल। एशियन फूड सेंटर 9057931338। एशियन फूड सेंटर।
जबरदस्त सेल मिल्टन में। जी हाँ, हॉल्टन फर्नीचर एंड फ्लोरिंग,
जहाँ मिलेगा आपको नेम ब्रांड फर्नीचर एशली पर 50% ऑफ। जी हाँ, मैट्रेसेस भी अप टू 50% ऑफ। सोफा सेट के साथ कॉफी टेबल फ्री, बेडरूम सेट के साथ मैट्रेस फ्री। लैमिनेट फ्लोरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम $29, हार्डवुड फ्लोरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $389, क्वार्ट्ज काउंटरटॉप स्टार्टिंग फ्रॉम $39 पर स्क्वायर फुट इंस्टॉल्ड।
545 मेन स्ट्रीट ईस्ट मिल्टन, 9058752228
Lasagne Grill, halal Pakistani cuisine. Test that makes the difference.
Cozy atmosphere, friendly service ke saath richness of food. Chahe dil kar raha ho kadahi, barbecue, wraps, chicken, beef, lamb ya phir vegetarian specialties.
Friday, Saturday, Sunday, full weekend special buffet.
Pursukoon mahal aur wo mazedar khane to aur kahan hai jana?
Lasagne Grill, 259 Kingston Road East in Ajax, 905-239-6786.
After Travels and Tours, your number one choice for airline tickets and Umrah services. Lowest prices on Umrah packages and groups. Any city, anytime or anywhere. Umrah visa lagwana ho ya hotel book karwana ho. Lowest rates with best services.
FJ Travel ki janib se Ramzan Mubarak ke liye special offer. $500 off on Hajj and Umrah packages. Limited seats book today. Call 905-461-0959.
Music, information, messages and chit-chat. in your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
Sazo Awaz Broadcasting Service 24/7 365 आप Sazo Awaz को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं www.eawaz.com या eawaz official app Android और Apple Store पर या फिर local phone line पर सुनने के लिए अभी डायल करें 647-557-1017 हमारे साथ शामिल रहिएगा हमेशा की तरह आज भी दिलकश प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं हम आपकी कीमती आरा के मुंतजिर हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं arifam@eawaz.com प्रोग्राम का आगाज करते हैं बीबीसी उर्दू न्यूज से सेरबीन के साथ
पीर 3 जून बीबीसी के प्रोग्राम सेरबीन के साथ मैं हूं अब्दुल्ला फारूकी सूडान में मुजाहिरीन ने फौज के साथ तमाम राब्ते खत्म कर लिए और आम हड़ताल का ऐलान कर दिया है इख्तदार शहरी इंतजामिया के हवाले न करने पर शुरू होने वाले एहतजाज के दौरान फौज की फायरिंग से 12 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं इंटरएक्टिव वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में आम ख्याल ये है कि यह आसान काम है जिसमें पैसे बनाना आसान है बस आवाज अच्छी होनी चाहिए लेकिन क्या ये तासुर दुरुस्त है आईवीआर आर्टिस्ट बोली
सिर्फ ये बोलने के लिए कि जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बीबीसी बीबीसी कॉल करने का शुक्रिया ये बोलने के लिए मैं पूरा दिन बोलती रही थी
ये सब मौजूद खबरों के बाद खबरें नाजिया गुलजार के साथ
सूडान में मुजाहिरीन पर फौज की फायरिंग से हलाकतों की तादाद 13 हो गई है जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं फायरिंग के वाकये की आलमी सतह पर मजम्मत की जा रही है दारुल हुकूमत खरतूम में बरतानिया के सफीर ने कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाना बाइस तशवीश है अमरीका के सिफारतखाने ने अपने ट्विटर पैगाम में इन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा है कि शहरियों के खिलाफ इस तरह का तर्ज अमल गलत है और फौरी तौर पर बंद होना चाहिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी मुलाजमीन की एक बस में नस्ब बम फटने से कम अज कम 4 मुसाफिर हलाक हो गए हैं जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं ताहम किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है पाकिस्तान में कप्तान चप्पल बनाने वाले नूरुद्दीन चाचा ने महकमा वाइल्ड लाइफ को 50,000 रुपए जुर्माना अदा करके इमरान खान के लिए सांप की खाल से तैयार करदा चप्पल वापस हासिल कर ली है महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक नूरुद्दीन चाचा के बेटे सलामुद्दीन आज महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में हाजिर हुए जहां पर उन्होंने तस्लीम किया कि ये चप्पल सांप की खाल से तैयार की गई थी जिस पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत उन पर जुर्माना आयद किया गया उनका कहना था कि उन्होंने जुर्माना इसलिए अदा किया है ताकि मेहनत से तैयार की हुई चप्पल इमरान खान इस्तेमाल कर सकें पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जेलों से 820 कैदियों को रिहा किया जा रहा है ये कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माना अदा करने की इस्तेआत नहीं रखते सूबाई हुकूमतों ने कैदियों के जुर्माने की मद में 27 करोड़ रुपये अदा किए हैं इंडियन एयरफोर्स का तैयारा AN-32 आसाम के इलाके जोरहाट से लापता हो गया है फौज के तर्जुमान का कहना है कि ये तैयारा आसाम के जोरहाट इलाके से रवाना हुआ था ये बीबीसी उर्दू सर्विस है
खास खास खबरें आपने नाजिया गुलजार से सुनी और हालात हाजरा का प्रोग्राम सेरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं ब्रिटिश एयरवेज का मुसाफिर बरदार तैयारा 11 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर उतरा कई अफराद इसे कौमी एयरलाइन के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं और कई इसे सारिफिन का फायदा इसकी तफसील और इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच का तज्जिया भी करेंगे लीना मोइन के साथ सेरबीन में लेकिन पहले आज का अहम तरीन मौजू सूडान के दारुल हुकूमत खरतूम में मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर जमहूरियत के हक में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फौज ने फायरिंग की है जिससे 12 से ज्यादा मुजाहिरीन हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं सूडानी फौज के हुकाम का कहना है कि वो सिर्फ मुजाहिरीन को मुंतशिर कर रहे थे सूडानी फौज के इस इकदाम की आलमी बरादरी ने मजम्मत भी की है तफसील सुनिए बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों के खुलासे में जो पेश कर रही हैं नाज़िश फैज़
सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की सुबह मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी, जिससे कई लोग हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। ताहम मिलिट्री हुक्काम का कहना है कि वो आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर से सिर्फ मुजाहिरीन को मुंतशिर कर रहे थे। सूडान में 3 साल हुकूमत करने वाले उमर अल बशीर को अप्रैल में उनके ओहदे से हटा दिया गया था, जिसके बाद मुल्क के इंतजामी अमूर अबूरी फौजी कौंसिल ने संभाल लिए हैं। GHQ के बाहर एहतजाज करने वाले इन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुल्क में बाकायदा इंतखाबात के जरिए अवामी हुकूमत आनी चाहिए। सूडान में अपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में लोग फायरिंग से बचने के लिए भाग रहे हैं और जख्मियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खरतूम में रहने वाले अफराद ने बताया कि उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर शदीद फायरिंग की आवाजें सुनी और धुएं के बादलों को भी हवा में बुलंद होते देखा। GHQ के बाहर एहतजाज में शामिल वला असाम अलबुशी ने BBC को बताया कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि GHQ के बाहर अभी भी लाशें मौजूद हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां मुजाहिरीन को नहीं रोक सकेंगी।
हम रास्ते बंद कर रहे हैं और हम दोबारा एहतजाज करेंगे। हमारे लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक फौजी कौंसिल इक्तदार से हट नहीं जाती और ताकत को अवामी हुकूमत को मुंतकिल नहीं कर देती, या फिर जब तक हम सबको मार नहीं दिया जाता।
फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाली फादिया ने BBC से बात करते हुए बताया कि ये बात साफ है कि फौज मुजाहिरीन को कत्ल करना चाहती है।
वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, ये बात आपके लिए क्या मतलब रखती है? ये मुजाहिरीन से जान छुड़वाना चाहते हैं, लिहाजा जब वो मुजाहिरीन को मार रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि वो इनकलाब नहीं चाहते और उसको रोकने के लिए वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
स्काई न्यूज अरब TV की रिपोर्ट्स के मुताबिक खरतूम के एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट्स ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। ये इकदाम सूडान के दारुल हुकूमत में पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद किया गया। उधर सूडान में मुजाहिरीन पर फौज की फायरिंग से हलाकतों पर आलमी बरादरी की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। खरतूम में बरतानिया के सफीर ने कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाना बायस तशवीश है। अमरीका के सफारतखाने ने अपने ट्विटर पैगाम में उन कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि शहरियों के खिलाफ इस तरह का तर्ज अमल गलत है और फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। ताहम सफारतखाने ने अपनी उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने फौज पर इल्जाम आयद किया था कि मुल्क में कशीदा सूरत हाल में फौज का हाथ है और इनका शहरियों के साथ रवैया जिम्मेदाराना नहीं है।
BBC के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा पेश किया नाज़िश फैज ने। सूडान में मुजाहिरों के मामले पर नजर रखे हुए थे हमारे साथी सकलैन इमाम, और उनसे BBC की नामा निगार आलिया नास्की ने पूछा कि सूडान में हालात इतने खराब कैसे हुए और बात इस नहज तक कैसे पहुंची।
देखिए, वहाँ पे जो पॉलिटिकल सियासी तौर पे जो एक बलवा या हंगामा जो आज हमें नजर आ रहा है, ये गुज़िश्ता दिसंबर से शुरू हुआ था जब वहाँ पे कोई कीमतों में इजाफा किया गया था। वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बहुत बड़ी थी, जो सूडान का जो पाउंड है उसको बहुत डी वैल्यू हो गया था। उसके बाद से लोग सड़कों पर निकल थे, रोटी 3 गुना उसकी कीमत में इजाफा हो गया था। वो उस वक्त से जो हंगामे शुरू हुए, जो उस वक्त तो सिर्फ इकतसादी मामला के लिए थे, लेकिन बाद में यही हंगामे, अब उनका मुतालबा इन हंगामा करने वालों का ये हो गया कि यहाँ पे जमहूरी इस्लाहात भी नाफिज की जाए, तो वो चलते चलते अब यहाँ तक पहुँच गया हुआ है।
दोनों तरफ से कोशिशें तो हो रही थी मुज़ाकरात की, उसके बावजूद मुज़ाकरात नाकाम क्यों हो गए?
देखिए, मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, मुज़ाकरात एक खास सिमत में आके तय पा गए थे, लेकिन जो सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो चाह रही कि इस पर अमल दरामद किया जाए, और साथ साथ अब ये तय पा रहा था कि जो एक काउंसिल जो बनेगी उसमें किसके कितने अरकान नुमाइंदगी करेंगे, यानी सिविलियंस के कितने अरकान होंगे और फौज की तरफ से कितने नामजद किए जाएंगे, ये तय नहीं पा रहा था। तो जो सिविलियंस हैं, यानी जो सूडानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो उनके पेशावर लोगों की जिसमें डॉक्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, जो मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे हैं, ये चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके आएँ, और इनको ये शक हुआ कि फ़ौज इसमें जो एक ताखीर कर रही है ये दरअसल अपने लोगों को लाना चाह रही है।
अब इस ताज़ा ऑपरेशन के बाद जो मुजाहिरीन हैं उनके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं?
دیکھیں خطرناک بات یہ ہے کہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں امکانات ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح پہلے 2011 میں جو ایک عرب اسپرنگ کی موومنٹ چلی تھی اور جس میں کچھ کامیابی بظاہر نظر ایک کچھ ملکوں میں, لیکن سوڈان ان ممالک میں تھا جہاں پہ یہ کامیابی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ اس وقت دارفور کی ایک الگ سے تحریک چل رہی تھی الہنگی کی. تو اس وجہ سے یہاں کے جو سویلینس لوگ جو تھے جن کو ہم شہری یا سول سوسائٹی کہتے ہیں ان کو کامیابی نہیں ہو سکتی تھی. تو اب خطرہ یہ ہے کہ اگر فوج سختی کرتی ہے اور ان کی طرف سے مزاحمت یعنی ڈسوبیڈینس بڑھتی ہے سویلین سوسائٹی کی طرف سے تو تصادم بڑھے گا, قتل بڑھ سکتے ہیں اور سوڈان زیادہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن امکان یہ نظر آ رہا ہے کہ فوج کے اندر دیکھ رہا ہوگا کہ فوج کے اندر اب قیادت کس طرف جا رہی, کیونکہ فوج کے اندر بھی دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے جو جنجاوید کی ایک جو نسل یعنی ایک اگلا گروپ ہے, اور اگر وہاں پہ کون تبدیلی لے کے آتا ہے یا وہاں کی قیادت کون لیتا ہے اس سے نظر آئے گا کہ اب سوڈان کس طرف جا رہا ہے.
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے ہیں, جہاں بکنگم پیلس میں ان کی ملاقات ملکہ برطانیہ سے ہوئی. برطانیہ پہنچنے سے قبل دوران پرواز صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر لندن کے میئر صادق خان کو سٹون کولڈ لوزر یعنی انتہائی ناکام شخص کہا تھا. اس سے قبل صادق خان نے ٹرمپ کا استقبال نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا. تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں, پیش کر رہے ہیں عمیر سلیمی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ پیر کی صبح اپنے 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے, جہاں سٹینسٹڈ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ جیرمی ہنٹ نے کیا. اس کے بعد ٹرمپ بکنگم پیلس گئے جہاں ان کی ملاقات ملکہ برطانیہ سے ہوئی. امریکی صدر کے اعزاز میں 40 توپوں کی سلامی اور فوجی پریڈ کی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس دورے کے دوران سیاسی رہنماؤں اور کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے. برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے سے اپنی ملاقات میں ٹرمپ موسمیاتی تبدیلی اور چینی کمپنی ہواوے پہ عائد امریکی پابندی پر بات کریں گے. ٹریزا مے سمجھتی ہیں کہ اس دورے سے برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. ہواوے کے معاملے پر امریکہ اور برطانیہ مختلف پالیسی رکھتے ہیں. اس پر برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ جیرمی ہنٹ کا کہنا تھا کہ
We wouldn't take any decisions that affected our intelligence sharing relationship.
ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ہمارے تعلقات اثر انداز ہوں. ہواوے کے معاملے پر ہم نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا, لیکن ہم کچھ تکنیکی مسائل پر غور کر رہے ہیں, جیسے ہواوے کے استعمال سے کوئی ملک ہماری جاسوسی نہ کرے.
ٹریزا مے اور ٹرمپ کے درمیان موسمیاتی تبدیلی پر بھی بات چیت ہوگی. ایک حکومتی ترجمان کے مطابق برطانیہ اس فیصلے سے مایوس ہے جس میں امریکہ نے سن 2017 میں پیرس معاہدے کی حمایت نہیں کی تھی. امریکی صدر ٹرمپ نے برطانیہ پہنچنے پر ایک ٹویٹر پیغام میں لندن کے میئر صادق خان پر تنقید کی. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صادق خان ایک ہارے ہوئے انسان ہیں جو اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے. ٹرمپ کی آمد پر لندن, مینچسٹر اور برمنگم سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں میں احتجاج متوقع ہیں. اس موقع پر اینا وکرسٹاف نے کہا کہ مظاہرین ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا عمیر سلیمی نے. برطانیہ کی فضائی کمپنی برٹش ایئر ویز کے بوئنگ 787 طیارے نے 11 سال بعد آج پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈ کیا. یوں تو برٹش ایئر ویز مغربی ممالک کی وہ واحد ایئر لائن بن گئی جس نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں بحال کی ہیں. یہ پروازیں 2008 میں سیکیورٹی خدشات کے باعث بند کی گئی تھیں. ایئر لائن کے چیف کمرشل آفیسر اینڈریو بریم کے مطابق ہفتے میں 3 پروازیں ابتدائی طور پر بحال کی گئی ہیں. نامہ نگار فرحت جاوید لینڈنگ کے وقت ایئرپورٹ پر ہی موجود تھی.
تقریباً 11 سال کے عرصے کے بعد آج برطانوی ایئر لائن نے یہاں اپنی پاکستان میں اپنی جو سروسز ہیں ان کا دوبارہ آغاز کیا ہے, اور آج برٹش ایئر ویز کی پہلی فلائٹ جو ہے وہ یہاں لینڈ کی ہے, اور اس طرح یہ یورپی ایئر لائنز میں سے پہلی ایئر لائن بنی ہے جس نے پاکستان میں دوبارہ اپنی سروسز کا آغاز کیا ہے. 2008 میں جب میریٹ پہ خود کش حملہ ہوا تھا, اس واقعے کے بعد سے نہ صرف برٹش ایئر ویز بلکہ کئی بین الاقوامی ایئر لائنز نے جو اپنے آپریشنز ہیں پاکستان کے لیے ان کو معطل کر دیا تھا. اب تقریباً 11 سال کے بعد اس کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے. آج جب یہ فلائٹ یہاں لینڈ کی تو اس موقع پر یہاں پیسنجرز کو ریسیو کرنے کے لیے, ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے وفاقی وزراء بھی موجود تھے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں برطانیہ کے جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی یہاں آئے اور انہوں نے ان مسافروں کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر ہماری برٹش ایئر ویز کے نمائندے سے بھی بات ہوئی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال میں کس قدر بہتری آئی ہے.
We only fire when things are absolutely safe for us to do so, and so we've reviewed everything.
ہم صرف اس وقت پرواز کرتے ہیں جب ایسا کرنا مکمل طور پر محفوظ ہو, اس لیے ہم نے ہر چیز کا
جائزہ لیا اور جب یہ محفوظ تھا اور ہمارے کسٹمرز کی خواہش تھی کہ یہ پروازیں چلائی جائیں تب ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے اور ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کے ساتھ ایک مصروف روٹ ہوگا اور کسے علم ہے کہ ہم شاید ہفتے میں 3 سے زیادہ پروازوں کا آغاز کر دیں۔
برٹش ایئر ویز کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر ملک میں ایک ہفتے کے دوران لندن اور اسلام آباد کے درمیان صرف 3 فلائٹس رکھی جائیں گی، لیکن امکان ہے کہ یہ تعداد جو ہے مستقبل میں بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر اس خبر کو، اس سٹیپ کو نہایت مثبت انداز میں لیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایویشن انڈسٹری اس کو مثبت انداز میں لے رہی ہے اور حکومتی سطح پر بھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں بہتری آئی ہے، جبکہ دوسری جانب جو برطانیہ میں 10 لاکھ سے زائد پاکستانی مقیم ہیں وہ بھی اس خبر کو ایک مثبت خبر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
یہ تھی نامہ نگار فرحت جاوید، اور اسی کے ساتھ ہی سربین اپنے نصف کو پہنچا۔
خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں پاکستانی ٹیم اپنا دوسرا میچ نوٹنگم میں انگلینڈ کے خلاف کھیل رہی ہے۔ آج کے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 349 رنز کا ہدف دیا ہے۔ مقررہ ہدف کے جواب میں اس وقت انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ نوٹنگم سے نامہ نگار عبد الرشید شکور۔
پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف بہت ہی ذمہ داری اور عمدگی سے کھیلتے ہوئے اپنی اننگز کا اختتام 348 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر کیا ہے۔ ٹاس انگلینڈ کے کپتان نے جیتا تھا، پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ 82 رنز کی اوپننگ شراکت رہی فخر زمان اور امام الحق کے درمیان، اور اس کے بعد بابر اعظم اور محمد حفیظ کے درمیان 83 رنز کی عمدہ شراکت رہی۔ بابر اعظم 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، محمد حفیظ نے 84 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی اور اس کے بعد کپتان سرفراز احمد نے بھی نیف سینچری سکور کی۔
گزشتہ روز ورلڈ کپ کے 5ویں میچ میں بنگلہ دیش نے جنوبی افریقہ کو 21 رن سے شکست دی تھی۔ فٹ بال لیگ انٹرنیشنل فرینڈلیز میں مردوں کے مقابلوں میں آج کولمبیا اور پینما کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ گزشتہ روز ترکی نے ازبکستان کو جبکہ فرانس نے بولیویا کو شکست دی تھی۔ ٹینس کے ٹورنامنٹ فرینچ اوپن میں خواتین کے سنگل مقابلوں میں برطانیہ کی یوہانا کونٹا نے کروشیا کی ڈونا ویکچ کو 6-2 اور 6-4 سے شکست دی۔ دوسری جانب ٹینس کے ٹورنامنٹ فرینچ اوپن میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں اسپین کے رافیل نڈال نے ارجنٹینا کے خوان اگناسیو لونڈیرو کو، جبکہ سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر نے ارجنٹینا کے لیونارڈو مائر کو 3 سیٹس میں شکست دی۔ ہاکی کے ایونٹ پرو لیگ میں مردوں کے مقابلوں میں کل نیدرلینڈز اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ اور اینتھنی جوشوا کے پروموٹر ایڈی ہرن کا کہنا ہے کہ نومبر یا دسمبر میں انگلینڈ میں ہونے والے مقابلوں میں جگہ بنانے کے لیے وہ اینڈی روئس جونیئر کے خلاف دوبارہ میچ کی توقع رکھتے ہیں۔ جوشوا کو روئس جونیئر نے نیو یارک میں ڈبلیو بی اے، آئی بی ایف، آئی بی او اور ڈبلیو بی او میں شکست دی تھی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے شمشاد آفریدی سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انڈیا میں گزشتہ 3 برس سے چند خواتین مل کر رمضان میں ان غیر مسلم افراد کو افطار کی دعوت دیتی ہیں جنہوں نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا یا پھر ان کی مسلمانوں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رہی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دوریاں مٹانے کی کوشش کی جائے۔ یہ خبر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے، دلچسپ ہے، ضرور پڑھیے گا۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے پشتون تحفظ موومنٹ اور اس کی قیادت پر پاکستانی فوج کے خلاف حرزہ سرائی کے الزام سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ آج مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ آزادی اظہار رائے لامحدود چیز نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
عدالت کا کہنا تھا کہ کسی ایک فرد کے خلاف حکم جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس درخواست سے متعلق ایسی ہدایات جاری کریں گے جس کو بنیاد بناتے ہوئے پالیسی وضع کی جا سکے۔ پی ٹی ایم اور اس کی قیادت کی طرف سے جاری ہونے والے بیانات کی اشاعت پر پابندی سے متعلق درخواست پاکستانی فوج کے ایک سابق افسر کرنل ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طرف سے دائر کی گئی۔ پیر کو جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس درخواست کی سماعت کی۔ درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل شعیب رزاق کا کہنا تھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ سے وابستہ عناصر ملک اور فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کی جانب سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس درخواست کی سماعت کے دوران پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین اور 2 رکن اسمبلی علی وزیر اور محسن داور کی طرف سے ابھی کوئی جواب داخل نہیں کروایا گیا۔ عدالت نے اس درخواست میں بنائے گئے فریقوں سے دوبارہ جواب طلب کر لیا ہے۔ ان میں سیکٹری داخلہ، سیکٹری دفاع، سیکٹری قانون، پی ٹی اور پیمرا کے حکام شامل ہیں۔
अदालत ने समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी है और इसके साथ साथ अदालत ने आइंदा समाअत पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इंटरनेट प्रोटोकॉल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर और अली वजीर को भी दोबारा नोटिस जारी करके तहरीरी जवाब तलब कर लिया है।
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं के मुकदमे की तफसील आपने शुमाइला जाफरी से सुनी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा और दीगर इलाकों में वकला ने बतौर एहतजाज अदालतों का बॉयकॉट किया है। यह बॉयकॉट सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के खिलाफ किया गया। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
हड़ताल की काल बलूचिस्तान बार काउंसिल और दीगर वकला तंजीमों की जानिब से दी गई थी। वकला की अदालतों में पेश न होने के बायस मुकदमात की समाअत मुतासिर हुई और साइलीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेंबर जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान मुनीर काकर ने इस रेफरेंस की मजम्मत करते हुए इसे आजाद अदलिया के खिलाफ करार दिया।
हम ये कहते हैं कि ये काजी फैजा के खिलाफ एक रेफरेंस नहीं है, नामियात है, ये आजाद जुडिशरी के ऊपर एक हमला है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा जुडिशरी के अंदर एक ही जो इंडिपेंडेंट माइंड और वोकल और इंडिपेंडेंट जजमेंट जो देते हैं वो काजी फैजा साहब ही ने डिलीवर किए हुए हैं, बाकी मेरे ख्याल में किसी के अंदर इस किस्म की जरूरत नहीं है।
बलूचिस्तान के सीनियर वकील अता खान काकड़ एडवोकेट ने बताया कि काजी फैज ईसा ने न सिर्फ क्वेटा में सानह 8 अगस्त बल्कि फैजाबाद वाकये के हवाले से इंसाफ पर मबनी सिफारिशात पेश किए, जिसके बायस बदनीयती की बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। बलूचिस्तान में वकला तंजीमों का मुतालबा है कि काजी फैज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को वापस लिया जाए। रेफरेंस वापस न लेने की सूरत में ईद के बाद बलूचिस्तान के वकला का कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा, जिसमें आइंदा एहतजाजी लाया अमल का ऐलान किया जाएगा। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी बैंक, एयरलाइन या टेलीकॉम कंपनी फोन करने के लिए रिसीवर उठाया होगा और दूसरी जानिब से टेलीफोन ऑपरेटर की जगह एक रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दी गई होगी। क्या आपने कभी सोचा कि यह आवाज किसकी है? आइए उस आवाज के पीछे छुपी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं।
आपका मतलूबा नंबर इस वक्त दूसरी कॉल पर मौजूद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
जिन लोगों को बताती हूँ कि भाई ये जो आप सुनते हैं ना, आपका मतलूबा नंबर बंद है, ये आवाज मेरी है, कहते अच्छा 24 घंटे आप नहीं रहती। मेरा नाम फरहीन मालिक है और मैं एक IVR आर्टिस्ट हूँ। IVR एब्रीविएशन है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। IVR मोबाइल नेटवर्क्स पे यूज होता है, IVR बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, IVR हर उस जगह पे यूज होता है जहाँ पे आप कस्टमर इंटरेक्शन होता है। टेक्निकली आपको बताती है कि जहाँ आप कॉल करें ये कौन सी जगह है। मुझे बोलने का बहुत शौक था, मतलब हमारे घर पे अगर कोई बेल बजा दे तो दरवाजा खोलने के लिए सबसे पहले मुझे भागना होता था। अगर फोन बज गया है तो वो सबसे पहले मैंने ही उठाना है और फोन उठा के कहना है हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आपको किससे बात करनी है। IVR मेरे लिए बिल्कुल अलग एक नई दुनिया थी, सिर्फ ये बोलने के लिए कि जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BBC, BBC कॉल करने का शुक्रिया, ये बोलने के लिए मैं पूरा दिन बोलती रही थी। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि जो फोन पर वो आवाज सुन रहे होते हैं वो कोई कंप्यूटराइज्ड वॉइस है या रोबोटिक वॉइस है। जब आप उनको बोलें कि आप एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके मेरी आवाज सुने और फिर बताएंगे आवाज कहाँ सुनी है, तो उनको पता चलता है अच्छा जब हमारे घर में लाइट नहीं आ रही होती वो आवाज जब हम कॉल करते हैं कंप्लेन के लिए वो आपकी होती है। बहुत सारे लोग सेल्फीज भी मुझसे खिंचवाते हैं, ओह अच्छा वो आपका मतलूबा नंबर बंद है, वो आप होती है, आपकी आवाज होती है, सो अब बहुत मजा आता है।
ये थी रेडियो प्रेजेंटर और IVR आर्टिस्ट फरहीन मलिक। और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ट्रेंट ब्रिज में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के मैच पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्कोर अपडेट कर दूं, इंग्लैंड ने 19 ओवर्स में 110 रन बनाए हैं और उसकी 3 विकेटें उसको नुकसान हो चुका है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजियाकार लीना मोइन। लीना वेलकम,
थैंक यू वेरी मच।
अच्छा सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग आप कुछ मुतमईन है, कुछ डिपेंडेबिलिटी वाला फैक्टर आया है?
यकीनन देखें आज बड़ी जबरदस्त इनको पिच मिली, ये वही पिच है जिस पे 481 रन इंग्लैंड बना चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड पिच है, तो आज पिच अच्छी मिली। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसी भी पिच मिली इन्होंने फायदा भरपूर उठाया, उस पे 349 का टारगेट दिया इंग्लैंड को, अच्छी पार्टनरशिप्स लगी, अच्छी इनिंग्स खेली, बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेली, बीच में हफीज ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, कप्तान सरफराज ने अच्छी इनिंग्स खेली, तो
इमाम भी करीब करीब
जी इमाम ने भी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी, तो जब ओपनिंग एक्चुअली ऑब्वियसली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जब ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी मिलती है, जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं वो मिल जाता है, तो फिर आगे भी सब कुछ अच्छा होता है। तो यकीनन आज बैटिंग अच्छी थी और पिछले मैच से भी जाहिर है, जब हम लोगों का दिल इतना दुख रहा है तो इनका भी दुखा होगा और ये तो पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कितनी तनकीद है। तो और पाकिस्तान फेमस है टू मेक कमबैक्स, हमेशा 92 का वर्ल्ड कप भी जीता था जब, तो उन्होंने इसी तरह की बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद की थी। गो के मुझे ये इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इस पर कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझती, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। दे कैन मेक कमबैक्स, कैरेक्टर अच्छा दिखाते हैं एंड आज फिर उन्होंने,
यानी ये जो तब्दीली की गई, आप इससे भी फिर यकीनन कुछ मुतमईन होंगी।
कौन सी तब्दीली?
ये जो टीम के अंदर दो तब्दीलियां हुई हैं
नहीं, शुएब मलिक की जो तब्दीली आप देखें, उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाया और उनकी जगह आपने इमाद को ड्रॉप कर दिया, जो कि पूरा 10 ओवर का स्पेल करते, शायद आपके लिए एक या दो विकेटें भी ले लेते, वो ओपन भी करते कई दफा बॉलिंग और स्लॉग ओवर्स में आके अच्छे खासा बैट कर लेते हैं। तो 8 रन के लिए अगर आपने ये चेंज की तो मैं इससे बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट हैप्पी। लेकिन जो दूसरी चेंज है, हाँ वो बड़ी अच्छी चेंज आपने की, क्योंकि जिस चेंज से टीम को फायदा हो वो चेंज करनी चाहिए। शुएब मलिक इंग्लैंड के बाहर बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंग्लैंड के, जैसे उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था, इंग्लैंड में 13.6 उनकी एवरेज है, जो कि कितने बड़े प्लेयर की नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, टोटल गो के बहुत बड़ा टोटल नहीं रहा, लेकिन क्या ये डिफेंडेबल टोटल?
एब्सोल्युटली, बिल्कुल डिफेंडेबल है। देखें लगभग 350 चेज करने, जो अच्छा खासा, अगर आज ये चेज करेंगे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज होगी इनकी यहाँ पे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में इतनी बड़ी चेज नहीं हुई, तो ये एज अपने पे बड़ा प्रेशर है कि आपने अगर चेज कर लिया, लेकिन इंग्लैंड के पास वो बैट्समैन यकीनन मौजूद हैं जो कि चेज कर सकते हैं, और जॉस बटलर और स्टोक सभी खेल रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी विकेट मिल गई पाकिस्तान को मॉर्गन की, बड़ी की विकेट थी। गो के कैच
ड्रॉप हुआ
था,
लेकिन वो
जो गलत साइड पे था बाबर आजम के, उन्होंने ट्राई किया था, कीपर को भी ट्राई करना चाहिए था वही कैच, लेकिन ये है कि टोटल ऐसा है जिससे अगर रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट मिलती रहे और फील्डिंग जो है काबू रखे, मतलब एक ग्राउंड फील्डिंग जो है वो भी अच्छी रहे और कैचिंग भी अब इसके बाद अच्छी रहे, तो वो ये ऐसा टोटल है जिससे हम पाकिस्तान मैच जीत सकता है।
अच्छा चलें, अभी तो जाहिर है पाकिस्तान ने टारगेट तो दे दिया है, अब बैटिंग कर रहा है, आपके ख्याल में शादाब से अटैक करवाना कैसा है? गोके ये सवाल का जवाब खुद उनकी पहली विकेट दे रही है, लेकिन ये जुआ था आपके ख्याल में?
ये इसलिए हुआ कि 2-3 दिन पहले इमरान ताहिर से, जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है डुप्लेसी, उन्होंने अटैक कराया और उन्होंने पहले ही ओवर में बेस्टो की विकेट ले ली थी। तो आज इसी को देखे, और इसी ग्राउंड पे, इसी इन्हीं साथ वाली पिच पे, बल्कि शायद इसी पिच पे, तो इसको देखते हुए ये आज गैम्बल किया सरफराज ने कि अगर इमरान ताहिर ले सकते हैं तो फिर ये भी ले सकते हैं, और दोनों लेग स्पिनर्स हैं।
चलें, कुछ हमारा वक्त तंग हो रहा है, लेकिन ये सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा कि ये आमिर की बॉलिंग के बारे में, क्या कोई ब्रांड न्यू आमिर है, स्विंग भी हो रही है, पेस भी निकाल रहे हैं?
हाँ देखें, आज बिटवीन 135-140 उन्होंने बॉलिंग की, जो कि बहुत इंप्रूवमेंट है, एक साल से इतनी पेस नहीं नजर आई, और जो पिछली 3 विकेटें उनको मिली उससे भी शायद उन्होंने बेहतर फील किया, और स्विंग भी आज नजर आई। गो के उनको विकेट नहीं मिली, उन्हीं की बॉलिंग पे वो कैच ड्रॉप हुआ, विकेट मिल सकती थी, लेकिन आज आई एम रियली इम्प्रेस्ड और मैं बड़ी खुश हूं उनकी इस कमबैक से।
बहुत शुक्रिया लीना मोइन, अगले मैच में भी जरूर आपसे गुफ्तगू करेंगे
इंशाल्लाह।
इसी के साथ ही सरबीन का वक्त भी खत्म हुआ। प्रोग्राम की एडिटर थी नादिया सुलेमान, प्रोड्यूसर नाजिश फैज और स्टूडियो मैनेजर थे आमिर सिद्दीक। अब्दुल्ला फारूकी समेत सरबीन की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां नाजिया गुलजार की ज़बानी।
सूडान में मुजाहिरीन पर फौज की फायरिंग से हलाकतों की तादाद 13 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। फायरिंग के वाकये की आलमी सतह पर मुज़म्मत की जा रही है। नॉटिंगम में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 349 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी है, और अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 113 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में रोड के एक हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। जापान की एक खातून ऐसी मुहिम की सरबराही कर रही हैं जिसमें हुकूमत पर जोर दिया जा रहा है कि वो उन कंपनियों पर पाबंदी आयद करें जो खवातीन को काम के दौरान ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने पर मजबूर करती हैं। जापान के साबिक सफीर ने मुबैना तौर पर अपने बेटे को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
आप सुन रहे हैं WTOR 770 साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारे रेडियो और टीवी के सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या डाउनलोड कीजिए फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। eawaz टीवी आपका अपना चैनल है। आप eawaz टीवी को तमाम IPTV बॉक्सेस पर फ्री देख सकते हैं। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज eawaz। फीडबैक और एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478986245।
Are you self-employed and having trouble getting a mortgage? Bank declined your mortgage? Are you in high interest credit card debts? Is your bad credit stopping you to get mortgage? Do you need emergency mortgage? Only one answer for all these questions. Call Harry Sorn, principal broker of Majestic Mortgage.
For Majestic service, call Majestic Mortgage. Your best interest is guaranteed. 647-228-1000.
रॉजर की बेस्ट प्राइस और प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करें वकार खान, जो रॉजर की एम्प्लॉय हैं और 13 साल से ज्यादा तजुर्बा। रॉजर की तीन सर्विसेज का बंडल ऑफर जिसमें टीवी विद HD रिसीवर, हाई स्पीड इंटरनेट, वायरलेस वाईफाई मॉडम, फोन कॉल विद लोकल कॉलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस भी मौजूद जिसमें अनलिमिटेड US कनाडा कॉलिंग और पाकिस्तान के 930 मिनट। टीवी, फोन, इंटरनेट और रॉजर की लेटेस्ट होम सिक्योरिटी डील्स के लिए रब्ता करें वकार खान
6478648000 Asian Food Center 905-793-1338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेड डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। ऑर्डर नाउ फॉर इन स्टोर फ्री पिकअप 905-793-1338। होम डिलीवरी इज ऑल्सो अवेलेबल। एशियन फूड सेंटर 905-793-1338। एशियन फूड सेंटर।
घर लेना हो या फिर लिस्ट करना हो, हर फार्म मुजफ्फर को कॉल करो।
इन्वेस्टमेंट करने का घर हो इरादा,
हर फार्म मुजफ्फर को कॉल करो।
बरसों से जाना पहचाना काबिल एतमाद नाम रियल स्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478986245 सिटीज के रियल स्टेट की
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसेमंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकेंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का। दावत हो तो किचन बात खूब करते हैं, और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटी नो हार्ट बर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसेस सागा में, बस कॉल कर लीजिए 905-405-8383 in the heart.
Help make my wedding perfect. I had exactly what I wanted and they made it possible.
जी हाँ, ये है ड्रीम कन्वेंशन सेंटर जिनके पास है तीन शानदार बॉल रूम्स, 50 से लेके 1300 अफराद के बैठने की जगह, हाई क्वालिटी इंटरनेशनल कुजीन, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडियो विजुअल, इवेंट कोऑर्डिनेशन, हाईली ट्रेन स्टाफ, खास दिन को बनाए यादगार ड्रीम कन्वेंशन सेंटर के साथ। ऑनलाइन बुकिंग या फिर आ जाए ड्रीम कन्वेंशन सेंटर 75 Hedgedale Road, Brampton 905-451-1500 905-451-1500।
You know how important it is to manage your income after your retirement? आपने सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे कहाँ से आएंगे और आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? My name is Adnan Alvi. I am a registered financial advisor. I can help you to set up a tax-free retirement income plan. Please contact me 416-301-0249।
Music, information.
ناظرین السلام علیکم. آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک آج کا تبصرہ میں حاضر خدمت ہے. آج ہمارے مہمان جناب مجتبیٰ بھٹی صاحب ہیں. مجتبیٰ بھٹی صاحب سے کوئی سیاسی اور کوئی سماجی اور کوئی مذہبی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت شکریہ. بھٹی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھٹی صاحب بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. ٹائم ہمارے پاس کم ہے, سوال شروع کرتے ہیں. آج کل تحریک انصاف کی حکومت ہے, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, معاشی مشکلات بھی ہیں, پچھلی حکومتوں پر بھی الزام لگتا ہے کہ انہوں نے جو انہیں حکومت دی خزانہ خالی تھا, اور خزانہ خالی ہونے کا شکوہ ہر حکومت نے کیا اور احتساب کا بھی ہر ایک نے کیا, لیکن نہ احتساب ٹھیک ہوا نہ خزانہ بھرا. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے کس طرح یہ ٹھیک ہوگی؟
شکریہ لیاقت صاحب, آپ نے سوال تحریک انصاف سے شروع کر دیا. یہ جو رونا دھونا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خزانہ خالی ملا, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ کا پروسیس یہ نہیں ہے کہ یہ چلا رہے ہیں تو اب آپ آگے ہو تو آپ ان کو سیدھا کرو. اٹس آن گوئنگ پروسیس ہے
جی,
ہمیشہ آپ ٹیک اوور کرتے ہیں نا جی کسی کو پرانے کا. یس, کچھ عرصہ جب آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں نظر آ رہے تھے, اس بات کی تو سمجھ آتی ہے. اگر آپ نئے آئے ہوں اور آپ پہلے سے ان کے سلسلے میں ساتھ نہ ہوں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے کل پرسوں ہم ایک افطاری میں تھے تو وہاں پہ اسی طرح کی یہ آج کل کا موضوع ہے, تو میرے ایک دوست جو ہے نا وہ بڑے جوش میں آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یا مجھے معلوم ہو کہ آپ 10,000 کے ڈیفالٹر ہیں یا آپ نے $10,000 دینا ہے. جب میں وہاں پر آ کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں 1,00,000 کا
جی,
میرے سامنے 10,000, تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب وہ 90,000 جو باقی ہے وہ جو آپ نے اوور چڑھا تھا اس نے, اب ظاہر ہے اتنے مجمع میں بات کر دی تو اس میں ہوا ہوا بڑی دلیل جو ہے بڑی اسٹرانگ دلیل دی اس نے. میں نے کہا بات سمجھے, پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر میں لایا نہیں, آپ نے ولنٹیئر کیا, ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 10 سال یا 5 سال جو بھی عرصہ ہے آپ میرے گھر کے اندر موجود رہے ہیں. آج اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی ہے, پورے 5 سال یہ اس اسمبلی میں موجود رہے ہیں, یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو یہ معلومات نہیں تھی. آپ ان کے ٹوٹل جتنے بھی پروگرام ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار کا قرضہ ہے, اتنے ہزار دے ہے, ہم آئے تو ہم ایسے کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے. اور وہ جو ان کا وزیر خزانہ رہا اسد عمر, وہ تو خود خزانے کمیٹی کی جو پارلیمنٹ کمیٹی ہے اس کا وہ ممبر تھا. یہ بات اب کہہ دینا کہ پچھلی حکومتوں نے ایسا کر دیا,
بھٹی صاحب
کچھ عرصہ تو چل سکتا ہے,
بھٹی صاحب عمران خان جو ہے وہ کوئی اکانومسٹ تو ہے نہیں. اب عمران خان نے جو اسد عمر صاحب ہیں ان پہ ڈیپینڈ کیا اور اسد عمر نے خود ببانگے دوہل دعوے کیے. دیکھیے اب عمران خان جو ہیں وہ ایک لیڈر ہیں, ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے, لیکن وہ جو ٹیم ہے انہوں نے عمران خان کو ایسی نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ عمران خان کو اگر میں ان کا مشیر ہوں میں کہتا ہوں یہ ہوگا تو وہ میری بات مانیں گے, और इमरान खान एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए कि जब उनको एक टेक्नोक्रेट्स जो है वो लाने पड़ गए। तो क्या मैं समझ सकता हूं कि टेक्नोक्रेट आने की वजह से क्या कोई इकोनॉमी में कोई बेहतरी आएगी? सवाल ये है।
देखिए, मैं इमरान खान को इस तरह से ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ना ही मैं ब्लेम गेम में पड़ता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपको हकायक का इल्म होना चाहिए था।
जी बिल्कुल,
क्योंकि आप यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सिस्टम। असेंबली में बैठे रहे हैं, तनख्वाहें ली हैं आपने, काम करते रहे हैं, भले आपकी हाजिरी बहुत ही मतलब ना होने के बराबर है, लेकिन आपकी पारी बाकी टीम तो सारी बैठी थी ना वहां पे, वो सारे कर रहे थे। दूसरी बात, आपने जो ये कही कि इमरान खान, देखें जो लीडर है ना वो सारे काम नहीं करता। लीडर का काम ये होता है कि वो अपने बंदों की खसूसियात को जाने, उनकी कैपेबिलिटीज को पता हो कि ये बंदा फलाना काम ये कर सकता है, फलाना नहीं कर सकता, ये उसका अक्यूमन है। इमरान खान साहब जो अपनी टीम लाए हैं, वो ये सारी की सारी टीम उनकी प्री डिटरमिंड थी, ये नहीं है कि वो हालात के मुताबिक लाए हैं, ये पहले से उनके माइंड में था कि यही मेरी टीम काम
करेगी। लेकिन वो टीम नाकाम हो गई ना।
हाँ, अब टीम की नाकामी तो फिर पूरे उस सिस्टम के, फिर आप उसमें इमरान खान को भी शामिल करें ना, टीम को नाकाम ना कहें, फिर टीम इमरान खान इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट टीम।
लेकिन वो उनको डिफेंड भी तो नहीं कर रहे हैं ना। इमरान खान साहब जो हैं, जो बंदों से अब असद उमर साहब हैं या दूसरे साहब हैं जो इन्होंने फायर किए अपनी उससे कैबिनेट से, उनको डिफेंड तो नहीं कर रहे ना कि
देखें डिफेंड, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफेंड नहीं कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनके अंदर ये को फॉल्ट है तो इसको अपने फॉल्ट पे भी लाए ना कि मुझसे ये मिसिंग हुई है। कम से कम अगर आप कहेंगे मैं तो सही था, ये गलत निकले हैं, ये नहीं होगा। ये आपके साथ पूरे 5 साल से चल रहे थे, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उनके ऊपर इल्जाम, आप उन्हें कहें यस मेरा फायर मिस हो गया, या मेरी जो पहले सिलेक्शन थी वो ऐसी नहीं रही, अब मैं अपनी सिलेक्शन में तब्दीली लाता हूं।
उनको मानना चाहिए
100%। देखिए इमरान खान का अलमिया क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान मेरी नजर में, मैं अब आपको थोड़ा सा एक मजहबी हवाला दे दूं, थोड़ा सा मजहबी, मेरी नजर में इमरान खान कुरान की 2 आयतों में फंस गया।
अच्छा,
मेरी नजर में क्या, सूरह सफ की 2 आयत है, या अय्युल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों वो कहते क्यों हो जो करते नहीं। एक आयत नंबर 2 को इस बात से बहुत नफरत है कि तुम जो कहो वो करो ना।
अच्छा,
मेरी नजर में इमरान खान इन 2 आयतों में फंसा हुआ है, जो मैं अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग है तौर पे समेत, क्योंकि इमरान खान ने पिछले 5 साल के अंदर हर वो बात कही है जो वो अब करने के काबिल नहीं है।
जी जी,
ठीक है ना जी। अब अभी भी उसके लिए मैं समझता हूं कि जो बेहतर हल है इमरान खान के ऊपर, वो ये कहे कि देखें जिस वक्त मैं ये सारी बातें कर रहा था उस वक्त एक सिनेरियो डिफरेंट था, और मैं जोश खिताबत में या जो मेरी मालूमात थी, जैसे कि वो कहते उसको तो कुछ मालूमात आप ऐसी बता दो वो बगैर कंफर्म किए उस बात को आगे बढ़ा देगा, अभी आप कहें कान में अभी आपको कह देगा। ये मुजाहरे आपने देखे हैं, आप निजम सेठी के केस में आप ये मुजाहरा देख लो, जिसमें उसने इतराफ़ किया कि मुझे तो नईम उल हक ने बता दिया था तो मैंने आगे बात बढ़ा दी। हालांकि मैं ये समझता हूं उस बात के ऊपर भी इमरान खान ने झूठ बोला है, झूठ लग होता है, क्योंकि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये आई है कि किसी भी इंसान के लिए जो झूठा होने के लिए सिर्फ यही बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कह दे।
कानों का कच्चा
नहीं, कानों का कच्चा है जो कान जो